نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رهبر کامل کتاب میں سے ہم جو چپٹر آج پڑھیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہری کی حیثیت میں یعنی سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے. مجھے امید ہے کہ اس چپٹر کو پڑھنے سے ہمارے بہت سارے سوالوں کو جواب مل جائے گا جو ہم یہ سوچ کے الجھتے رہتے ہیں کہ عام طور پہ رہنا, ٹریفک رولز کو فالو کرنا اور معاشرے میں رہنا نیبرز کے ساتھ, کیا یہ بھی دین ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کرتے تو ہمیں گناہ ہوتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طریقے سے رہنا سکھایا, اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی رہنے والوں میں بنا دے. شروع کرتے ہیں. کتاب کا صفحہ نمبر 210 ہے, 210. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے حاکم بھی ہیں, قاضی بھی, امام بھی ہیں, پیر بھی. یہاں پیر سے مراد عالم رنگ و بو, بو کہتے ہیں خوشبو کو, کی عظیم ترین شخصیت ہے, نہ کہ ہمارے رواجی پیر. یعنی پیر کا لفظ انہوں نے صرف اس لیے استعمال کیا کہ لوگ اس اصطلاح کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں, ادروائز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیزیں منسوب نہیں کی جا سکتی جو آج کے دور میں معروف ہیں. وہ کبھی یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہری ہونے کی حیثیت سے تمام اہل شہر سے مساویانہ یعنی برابر سلوک بھی روا رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں جس شخص کو ایک معمولی سا عہدہ مل جاتا ہے اس کا دماغ ثریا پر چڑھ جاتا ہے. ثریا ایک ستارہ ہے, اوپر آسمان پہ بلندی پہ ہوتا ہے. اور برابری کا برتاؤ تو ایک طرف رہا, وہ عوام الناس کے ساتھ بیٹھنے کو بھی آر سمجھتا ہے یعنی برا سمجھتا ہے. اور جب تک اپنے لگے یا رتبے کی سوسائٹی نہ ملے وہ غربا سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے بالکل خلاف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام اپنے اپنے وقت معینہ پر کیا کرتے تھے. عدالت کا وقت ہوتا تو عدالت کرتے, رشد و ہدایت کا موقع ہوتا تو وعظ اور تلقین فرماتے, جنگ کا موقع ہوتا تو سپہ سالار بن جاتے, نماز کا وقت ہوتا تو امامت فرماتے. مگر جب عام مسلمانوں میں آتے تو ان کے حقوق کی نگہداشت فرماتے, محلہ داروں سے ملتے, یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرتے, ہمسایوں سے ان کی ضروریات دریافت کرتے, بیماروں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے یعنی بیماروں کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے جاتے, اگر کوئی جنازہ ہو جاتا تو اس میں شرکت فرماتے. حالی جن پر رحم اللہ تعالیٰ کرے انہوں نے اسی لیے کہا, یعنی مولانا حالی کا ایک شعر ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں, بلکہ شعر نہیں ایک پوری نظم ہے ان کی, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا. تو یہ تھا ایک انٹروڈکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کیسے تھے. اگر دیکھا جائے تو ہم سب دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں تو اپنے عمل سے کچھ نہ کچھ ضرور لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. بہت ساری باتیں جو انسان بول کے نہیں سکھا سکتا, پڑھ کے پڑھا کے نہیں سکھا سکتا, وہ انسان اپنے عمل سے سکھا لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مختلف روپ ہم نے دیکھے تو اس کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے نا کہ آپ کتنے نائس اور ڈیسنٹ انسان تھے. اب وہ شخص جو ایک حاکم بھی ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت بھی بخشی, نبی بھی ہو, تو عموماً ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پھر لوگوں کی ریچ سے باہر چلے جاتے ہیں. جو جتنا اوپر جانے لگتا ہے یعنی کسی بھی فیلڈ میں, اللہ تعالیٰ کسی کو علم کے لیے چن لے یا مال میں بڑائی آ جائے یا حکومت میں آ جائے, تو نہ جانے کیوں لوگوں کے اور اس کے بیچ میں دیواریں آنے لگتی ہیں, پردے حائل ہونے لگتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راہبر کامل ہونے کی حیثیت کو ہم دیکھیں تو آپ لوگوں کے بیچ میں پردے نہیں تانتے تھے. آپ کا معاملہ کیسا ہوتا تھا؟ ہر ایک کے ساتھ کھل مل کے رہتے تھے. जब हाकिम बनते तो किसी की जरूरत ना होती आपके सामने बात कर सके। काजी बनते किसी की जरूरत ना होती कि आपके सामने किसी की सिफारिश कर सके। जब आप एक उस्ताद बन के अपनी जगह पे आके बैठते तो सहाबा कराम यूं होते कि जैसे दरख्त सरों पे परिंदे बैठ चुके हैं, इतना अदब था। लेकिन जब अपने दोस्तों में होते, बेतकल्लुफ में होते लोगों में, तो आप इतना हंसते, इतना मुस्कुराते। सहाबा कराम कहते हैं कि हम में से हर एक को ये लगता था कि नबी सल्लम को सबसे ज्यादा प्यार मुझसे है। जितना मेरे साथ इजहार करते उतना किसी के साथ नहीं करते। वो कहते हैं ना कि वो हो जो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नरम, हो जो रस्म में हक को बातिल तो फौलाद है मोमिन। शेर तो गलत होगा लेकिन मफहूम ठीक है। एक अच्छे कायद, एक अच्छे लीडर की शान क्या होनी चाहिए कि जहाँ हक और बातिल का मार्का आ जाए, यानी यहाँ हक और बातिल से मुराद आप ये भी ले सकते हैं कि अपने असूलों की बात आ जाए, काम का वक्त आ जाए, तो उस वक्त तो फौलाद बन जाए, कमिटेड, कोई उसको उसकी बातों से ना लाए। हमारा हाल क्या है कि पहले बेतकल्लुफ हो जाते हैं, फिर बेतकल्फी में लोग कहते हैं चलो आज सबक नहीं पढ़ते, तो उस्ताद कहते हैं चलो ठीक है फिर आज नहीं पढ़ते हैं। हम सबक सुनाने के लिए फोन किया था ग्रुप लीडर को, इतनी बेतकल्फी बड़ी कि सबक सुने बगैर बंद कर दिया, बाद में याद आया कि वो तो किया ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान के एक एक रूप के अंदर कंट्रोल होना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे गाड़ी होती है ना, आप उसमें गियर लगाते हैं, आप एकदम ब्रेक लगा लेते हैं। मैंने बहुत चीज इस चीज से सीखा है, जो अक्सर गाड़ियों के साथ लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे होते हैं ना, तो वो चेंज कर रहे होते हैं, रिवर्स गियर है, ये न्यूट्रल है, ये फर्स्ट गियर है। पाकिस्तान में स्पेशली जब मैनुअली गाड़ियाँ ऑपरेट होती हैं तो उसमें होता है, तो मैं उसमें सीखती हूँ कि देखिए हल्का सा ब्रेक लग जाता है ना तो हर चीज़ रुक जाती है। इंसान को अपने जज्बात को ब्रेक लगाना आना चाहिए। खुश है तो खुश है, एकदम हालात बिगड़े तो आप उदास हैं तो उदास हो जाए, उदास तो आपने किसी को खुश देखा तो एकदम खुश हो जाए। यानी जिंदगी में अपने रूप, अपने एंगल्स, अपने जाविये बदलना और हालात के मुताबिक खुद को ढालना इंसान को फिर हर दिल अजीज कर देता है। फिर ऐसे लोग थकते भी नहीं है। कुछ लोग आप देखिए कि एक जगह बैठते हैं ना, वो सारा वक्त वहीं रहते हैं बैठे हुए, थकते नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। गाड़ी में जरा देखे सोचें, कभी ठुस ठुस के बैठे हो लोग तो एक हाय मेरी कमर टूट गई, हाय मेरा पाँव दुख गया, और दूसरा भी उतनी जगह में बैठा था वो मुतमईन है। क्यों? कि जो दूसरा है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी बॉडी ने अपने आप को कर लिया मूव। लेकिन जो बंदा सख्त होता है ना मिजाज का या अपनी जिस्म का, फिर वो जल्दी थक जाता है। एक डिजोल्विंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। मैं जब नबी सल्लम के बारे में महसूस करती हूँ, और स्पेशली अब ये किताब चूंकि एंड की तरफ जा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह सोचना शुरू करें। और नबी सल्लम तो एक राहबरे कामिल बने ही थे, हमें भी बनना है। कामिल तो नहीं बन सकते लेकिन हर एक राहबरी के मनसब पे तो फायज है ना। ईमान वाला पहले खुद रास्ते ढूंढता है, जब रास्ते मिल जाते हैं तो वो दूसरों को देने लगता है। और कुछ नहीं तो अपने बच्चों के राहबर तो है ही, अपने घर के छोटे लोगों के, अपने इदारों के, दूसरे लोगों के राहबर हैं, तो लिहाजा अपनी जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। हर मौके को देखना है किस मौके पे क्या बेहतर है, फिर उसका लिहाज कीजिए। हंसने का मौका है तो संजीदगी अच्छी नहीं है, संजीदगी का वक्त है तो हंसना जरूरी नहीं, काम का वक्त है तो आराम ठीक नहीं, आराम का वक्त है तो काम ठीक नहीं। हम हमेशा खलत मलत करते हैं, क्लास में आके बैठते हैं पढ़ने के लिए तो घर की चीजें सोचने लगते हैं, ये हो रहा होगा आज, ये पकाना है आज, वहां जाना है आज, ये खाना है। और जो ही शौहर बेचारे के पास बैठे तो हमें टेस्ट याद आ जाता है कि मेरा तो इस वीक टेस्ट है और मुझे याद करना है। इधर की चीजें उधर और उधर की चीजें इधर करने का नाम ही असल में अपनी शख्सियत को डिस्ट्रॉय करना है। तो देखते हैं कि नबी सल्लम किस तरीके से काम करते थे। इतने हिस्से में एक या दो चीजों पे मैं समझती हूँ कि जरूरी है बात कर दूं आपके सामने। जैसे यहाँ इन्होंने हाली मरहूम लिखा, मैंने नहीं पढ़ा इस लफ्ज़ को, आपने शायद सोचा हो कि मैंने इस लफ्ज़ को क्यों नहीं पढ़ा। देखिए कोई फतवा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं चीज़ महसूस करती हूँ वो ये है कि मरहूम मफ़ऊल, मफ़ऊल का वजन क्या होता है, जिस पर काम किया जाए। तो मरहूम क्या लफ्ज़ है, जिस पे रहम किया गया। एक जैसे हतमी बात दिख रही है कि इस पे रहम कर दिया गया, हम में से किसी को नहीं पता जब तक कि अल्लाह ताला ने बताए, तो अवॉइड करना चाहिए, दुआ दे दिया करें। अब देखिए कि अल्लाह ताला के नबी के सहाबियों के लिए तो आता है ना रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उन पर राजी हो गया। हमें इसके बस दलील मिलती है ना, कुरान पाक में कितनी दलीलें, रादियत मर्दिया, या सूरह बय्यिना का आखिरी रुकू है, सूरह फतह के आखिर में है, अब उसकी दलील मिल गई। लेकिन अब हम किसी और को रदी अल्लाह अन्हु नहीं कहते ना, कोई किसी भी अपने आलिम को कहें, किसी मौलवी साहब हैं, अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हो आपके मस्जिद के इमाम, में नहीं कह सकते ना, क्यों? हमें नहीं पता अल्लाह राजी हुआ कि नहीं। हाँ, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। तो इसीलिए इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। फिर दूसरा, इसमें ये जो चीज थी इनके शेर में, दूसरा मिसरा जो था कि मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, ये कब था? जब जिंदगी में थे, अपनी जिंदगी में उम्मीदें करते थे पूरी उनकी, जो आता था खाली नहीं जाता था, और उन्होंने इसी मफहूम से लिखा हुआ है। लेकिन आज के दौर में अगर कोई कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब लोगों की मुरादें पूरी कर रहे हैं और ये सारे काम कर सकते हैं, तो ये जिंदगी तक थे, आज इस पे उनको कुदरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात की वसअत, आप बहसियत एक शहरी होने के तमाम अहले शहर से यकसां ताल्लुकात रखते थे, हत्ता कि यहूद से भी आपका मेल जोल रहता और अक्सर इनसे लेन देन भी होता रहता। बारहा आपको यहूद से कर्जा लेने का भी इत्तेफाक हुआ, यहाँ तक कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, यानी आपकी वफात हुई, तो आपकी जिरह एक यहूदी के पास बतौरे रहन पड़ी थी। ये वो जमाना था जब मुसलमानों के पास काफी रुपया मौजूद था। अगर आप किसी मुसलमान से रुपया लेना चाहते तो आसानी से ले सकते थे, मगर ऐसे वक्त में भी आपका एक यहूदी से कर्जा लेना इस बात पर दलालत करता है कि आपके ताल्लुकात बहसियत एक शहरी होने के तमाम कौमों से यकसां थे। तो पहली चीज क्या देखा कि मुआमलात का ताल्लुक हर एक से हो सकता है। अब वो यहूदी था, आपसे कर्जा ले रहे हैं, जरा इस पे एक लम्हे के लिए रुक के सोचिए, कर्जा कोई किसी को कब देता है? ट्रस्ट होता है। यहूदी ने आपको कर्जा दिया क्योंकि उसको आप पे ट्रस्ट था। क्या आज हमारा भी यही मामला है? यानी असल खूबी वो है कि आपका दुश्मन भी आपको मान जाए कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, तो आपके ताल्लुकात इस हद तक भी थे। अब देखिए कि आप मदीना की जिंदगी देखें तो यहूद से बड़े मार के होते हुए दिखते हैं। ऐसे लगता है कि बस हर वक्त नबी सल्लम यहूदियों को दे के फतवे देते होंगे, इसको मार दो, इसको किल कर दो, इसको ऐसे कर दो। हाँ, लेकिन नहीं, मामलात मामलात हैं। मैदान जंग में अगर कोई आता है आपको मारने की नीयत से, तो उससे मामला डिफरेंट होगा। लेकिन अगर कोई घर बैठा है, मुतमईन है, आपके नेबर्स में रहता है, आपके पड़ोस में है, तो उसके साथ मामला फर्क होगा। फिर आप देखिए कि इन्होंने ये भी लिखा है कि आप मुसलमानों से भी ले सकते थे, लेकिन आपके ताल्लुकात हो सकते हैं उनसे ज्यादा अच्छे थे। तो इसमें क्या पता चला कि अगर अच्छे ताल्लुकात हैं तो उसको कोई हर्ज नहीं, और आपको वो याद होनी चाहिए चीज जो तफसीर में आपने देखी थी कि ताल्लुकात की चार मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जिसमें पहला दर्जा मुआमलात का होता है। तो मामले जायज हैं, आप किसी से ले सकते हैं, वो आपसे लेते हैं, आप HEB पे जाते हैं, ग्रोसरी ले आते हैं, वो आपसे पैसे ले लेते हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। आपकी खिदमत में एक यहूदी लड़का रहता था जो आपसे बहुत मोहब्बत रखता था। एक दफा वो बीमार हो गया तो आप इसके मकान पर इयादत के लिए तशरीफ ले गए और इसके सरहाने बैठकर तशफी आमेज कलेमात इरशाद फरमाते रहे। तशफी यानी जिससे उसके दिल को सुकून हो शिफा से, और इसके माँ बाप भी देर तक बातें करते रहे। आप देखिए कि ये वो बच्चा है जिसके बारे में, यहाँ तो इन्होंने सिर्फ ताल्लुकात पे बात की है, लेकिन ये बच्चा नबी सल्लम के पास रहता था और बीमार हो गया, फिर आप इसके घर गए इसकी इयादत करने, और वहाँ जाके आपने इसको कहा था कि मुसलमान हो जा। जब उस बच्चे ने ये बात सुनी तो अपने बाप की तरफ देखा, तो बाप ने क्या कहा कि अबुल कासिम की बात मान ले, और इसने कहा कि अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बात कही, और उसके बाद उस बच्चे का इंतकाल हो गया। नबी सल्लम ने उसके बाद उसका कफन दफन सब कुछ इस्लामी तरीके से किया, और आप जा रहे थे रास्तों में और खुशी से पुकार रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनकज़हु मिनन्नार, तमाम तारीफें उसके लिए हैं जिसको अल्लाह ने आग से बचा लिया। कलमा पढ़ा, साथ ही दुनिया से चला गया। तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान जिंदगी भर अगर अपने साथ रहने वाले लोग हैं, कोलीग्स हैं, कोई और भी हैं, तो उनकी इयादत के लिए जा सकते हैं। और ख़ास तौर पे आप देखिए, जब बीमार इंसान होता है तो उस वक़्त तो बहुत ही ज़्यादा इंसान करीब होता है ना फितरत के, गुनाहों से दूर होने लगता है। क्या आप इस सुन्नत पे अमल करना चाहते हैं? चले बनाइए इस पे एक्टिविटी, अपने इर्द गिर्द लोगों में, नेबर में, या किसी हॉस्पिटल में किसी गैर मुस्लिम बीमार की इयादत करनी है। वैसे खुदा ना खास्ता कोई अपना हमारा रिश्तेदारों में या दोस्तों में बीमार होता है तो हम जाते हैं ना, लेकिन आपने नियत करके किसी गैर मुस्लिम को देखने के लिए जाना है और हॉस्पिटल में चले जाएं तो बहुत ही अच्छा है। अच्छी सी बात करने के लिए कोई किसी को, आप कोई अच्छा सा कार्ड दे सकते हैं, कोई उनको फूल दे दें, कोई खाने की चीज़ दे दें इस नीयत से कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे दे, तो ये चीज़ आप देखेंगे अगर हम मुसलमान ये काम करने लग जाएं। अगर हर मुसलमान अपनी ये आदत बना ले कि उसको हफ्ते में एक दफ़ा किसी एक की आदत करनी है, तो आप देखिए कितनी जल्दी इस्लाम फैले। और ये एक ऐसी खामोश दावा होगी, और अगर उस कार्ड पे अगर हम जो दें उस पे कोई मौत या जिंदगी के बारे में चीज लिख दें, कोटेशन, पर्पस ऑफ लाइफ लिख दें, टाइम के बारे में कुछ लिख दें, और वो ऐसा मैसेज है कि जिसको कुरान या कुछ कहने की बजाय जैसे गोल्डन सेइंग्स होती हैं, क्या पता है किसी का दिल खुल जाए। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम भी इसी तरह के मामलात कर सकें। इसी तरह एक और वाक्य लिखते हैं कि आपने एक दफ़ा एक यहूदी से कर्जा लिया, इसने मियाद यानी वक्त मुकर्रर से कबल ही अदायगी का मुतालबा कर दिया, शुरू कर दिया, यानी जो मुद्दत तय हुई थी उससे पहले ही वापस मांगना शुरू कर दिया। एक दिन तो इसका मुतालबा हद से बढ़ गया और इसने आपकी चादर को पकड़कर सख्त सुस्त कहना शुरू कर दिया। आपने फरमाया, भाई अभी मियाद मुकर्रा में 3 दिन बाकी हैं। इतनी देर में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले आए, उन्होंने जो ये देखा तो इस यहूदी पर हाथ उठाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रजी अल्लाह अन्हु को रोका और फरमाया, उमर तुम्हारा ये हक न था कि इसे मारते। हाँ इतना कह सकते थे कि अभी मियाद मुकर्रा से पहले मुतालबा सही नहीं है, और मुझे ये कहते कि आप जहाँ तक हो सके जल्द अदायगी कर्ज की फिक्र करें। यहूदी ने जब आपकी ये नरमी और खुल्क देखा तो इसी वक्त दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। वैसे तो माल मिलना था, अब इस्लाम भी दे गया, अपना दिल दे के जा रहा है। इस वाक्य से ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात अहले शहर से कैसे थे। अगर आप बहैसियत हाकिम होने के चाहते तो इसे कड़ी सजा दे देते, हजरत उमर ही को इशारा कर देते, मगर ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने अखलाके हमीदा से काम लिया और बाद में मालूम हुआ कि यहूदी ने इस हरकत शनिया का इर्तिकाब भी महज इसलिए किया था कि तजुर्बा करे कि नबी सल्लम के अखलाक कैसे हैं। जी वो आपको टेस्ट कर रहा था। बाज़ लोग सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं और मुख्तलिफ सपोज किस्म की बातें करके आपसे पूछते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इससे भी आप देखा आपने कि असूलों पे समझौता नहीं करना। यहाँ एक चीज़ तो मैंने देखी, जो कर्ज लेते हुए रकम मुद्दत लिखी थी, गोया कि आपने उस हुक्म पे अमल किया जो सूरत बकरा की सबसे लंबी आयत आयत दैन में है कि इजा तदायन तुम भी दैनिन, जब तुम मामला करो दैन के साथ तो उसको लिख लो, और जो नहीं लिखता उसको गुनाहगार होता है वो, और बाद में खराबी का जरिया भी बनता है। फिर हज़रत उमर की गैरत देखिए, अल्लाह के नबी सल्लम से मोहब्बत इतनी थी कि बर्दाश्त नहीं कर सके कि कोई आपकी चादर पकड़े। फिर नबी सल्लम का इंसाफ देखिए कि तरीका भी कैसा सिखा दिया, इसलाह कर दी और साथ बता दिया यूं ना कहते यूं कहते, और उसको ये कहते मुझे ये कहते, ये नहीं कहा कि मुझे ना कुछ कहते, मुझे भी कहो कि मैं दे दूँ। गोया कि ये अदब सिखाया, और इससे पता चलता है कि एक अच्छा कायद इसलाह का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, के लोग जो हैं वो इस चीज़ के साथ अपने आप को महसूस ना करें और इस अपनी हिदायत उनकी हिदायत से ये दूर हो जाए। फिर इसके बाद आप देखिए कि वो शख्स मुसलमान हो गया। आज अगर ऐसा खुल्क हमारे अंदर आ जाए तो आप देखिए कि लोग कितनी जल्दी इस्लाम की तरफ आए। आज भी लोग कर्जे लेते होंगे यहूद से, कार्ड्स पे या कहीं भी, और अगर उनको पेमेंट्स में तंग करें तो मुश्किल होगी ना। इस्लाम का एक बुरा मिजाज उनके सामने नजर आएगा और इस्लाम का एक बुरा तसव्वुर उनके जहनों में आएगा। इसलिए मुसलमानों से मामला करते हुए तो केयरफुल रहना ही है, लेकिन गैर मुस्लिम के साथ मामला रखते हुए और ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। हमसाया अकवाम से ताल्लुकात, यानी जो नेबर्स कंट्रीज थे उनके साथ आपका कैसा ताल्लुक था। एक दफा एक यहूदी औरत ने अर्ज किया, मेरी दावत कबूल फरमाइए। आपकी आदत मुबारक थी कि जो अमीर से अमीर या गरीब से गरीब आपको दावत देता आप मंजूर फरमा लिया करते थे कि कहीं इसकी दिल शिकनी ना हो। आपने क्या सीखा इससे? देखिए कि जिसकी निगाहें अल्लाह ताला के नाम पे होती हैं, जो अल्लाह ताला की जात को देखता है, उसके लिए सारे गरीब हैं। या युहन्नासन तुमुल फकराओ इलल्लाह, हम सब गरीब हैं। इसलिए ये जो छोटे और बड़े होने की बात है, इसको दिल में नहीं लाना चाहिए। नजर रखिए कि दावत देने वाला क्यों दे रहा है, खलूस से दे रहा है। दूसरी चीज से, क्या हम हर दावत कबूल कर सकते हैं? नहीं। देखिए कि दावत देने वाला खुद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको दावत दे के वो आप ही के लिए मुश्किल खड़ी कर दे और आपकी नेकियों को जाया करवाने का बायस बन जाए। बाज दफा गलत कामों की दावत हो सकती है। बाज दफा कोई ऐसी दावत कोई दे सकता है कि आपको लगता है कि उसका सोर्स ऑफ इनकम ठीक नहीं है, तो उस दावत को फिर आप झुटला सकते हैं। क्योंकि आप जब ये बात सुनते हैं तो बाज दफा लोग इसको भी प्लील इसको बुनियाद बना के फिर कहते हैं हर दावत कबूल कर लो। जी, अल्लाह के नबी सल्लम दावत कबूल करते थे, और ऐसी हदीसें एक दफा सुन के याद हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि लोगों को दोबारा भी कहना पड़े, फौरन मान जाते हैं। नहीं, अगर वो दावत ऐसी है, आपको लगे वहां जाके गुनाह होगा या कोई नाफरमानी के काम है, अवॉइड कर सकते हैं। कोई ऐसा आपको पता है, किसी का बिजनेस ऐसा है, किसी का कमाई ऐसी है जिसके अंदर सरेसर सरासर यानी खुल्लम खुला ऐसी कोई चीज है और आपको वो खुद इसका बता भी देते हैं, तो फिर अवॉइड किया जा सकता है अच्छे लफ्जों में। लेकिन यह है कि किसी की गुर्बत की वजह से उसकी दावत को ठुकराना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ अमूमन देखे कि दिल में सोच रहे होते हैं, अच्छा किसी ने बहुत दिन से दावत नहीं की, देखो फलां को मैंने एक दफा भी बुला लिया था, दोबारा भी, और अभी तक इन्होंने नहीं बुलाया। और जूं ही वो बेचारा फिर अपनी इन्हीं मुसीब आपकी बातों से डरने की वजह से आपको कहता है अच्छा इस वीकेंड पे मेरे घर खाना खाने, तो फिर आगे से अमूमन हम क्या कहते हैं? मान जाते हैं फौरन, क्या जरूरत थी, क्यों तकल्लुफ किया? नहीं, सुन्नत के हाँ मान जाओ। और यहाँ देखिए कि यहूदी औरत की दावत कबूल कर रहे हैं आप। जब आपने इस यहूदिया जैनब की दावत भी मंजूर फरमा ली, जब खाना खाने बैठे और अभी पहला ही लुकमा उठाया तो आपको मालूम हो गया कि इस खाने में जहर मिला दिया गया, चुनाचे आपने अपना हाथ रोक लिया और आपका एक दोस्त जो आपके साथ ही खाना खा रहा था इसी असर से शहादत पा गया। जैनब पर मुकदमा चलाया गया, मगर इसने ये कहकर जान बख्शी की दरख्वास्त की कि मुझे महज इस तजुर्बे के लिए उकसाया गया था कि देखें आप दावत मंजूर भी फरमाते हैं या नहीं। नीस खाने में जहर इसलिए डलवाया गया कि अगर आप सच्चे नबी होंगे तो आपको बजरिया वही इस हरकत का पता चल जाएगा, और अगर नऊज़ु बिल्लाह दावा नबूवत झूठा है तो इस जहर के असर से फौत होकर दुनिया को इस झगड़े से आजाद कर देंगे। जैनब की यह हरकत चूंकि एक साजिश के मातहत थी और वो कठपुतली के तौर पर काम कर रही थी, यानी ये खुद नहीं कर रही थी, पीछे से एक प्लानिंग थी, और इसने माफी की दरख्वास्त भी पेश कर दी, इसलिए आपने अपनी रहमतुल आलमीनी से काम लेते हुए इसे मुआफ कर दिया। जरा सोचें, आज कोई बादशाह या सदर या वजीर आजम किसी ऐसी चीज में मुलव्वस हो तो वो क्या करेगा? कतल, उसको कोई कत्ल की कोशिश कर दे और मुजरिम पकड़ा जाए या सामने हो तो क्या हालात होंगे? इस वाक्य से हमें कई एक सबक मिलते हैं, बिलखसूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहरी ताल्लुकात जो आप हमसाया अकवाम से रवा रखते थे, यानी उनके साथ उन ताल्लुकात अच्छे होते थे, बिल बदाहत यानी खुले तौर पर साबित हो रहे हैं। कोई कुछ कहना चाहेगा इस वाक्य को सुनने के बाद?
जैसे कि अभी अगर इस टाइम पे अगर कोई किसी को मारना चाहे, मारना तो दूर की बात है, लेकिन अगर किसी को वर्बली भी नुकसान पहुंचाना चाहे, तो जैसे इस मुल्क में भी ऐसे लॉज हैं कि अगर आपको जुबान से भी कुछ कह दें तो उसको भी पकड़ लेते हैं, कोई इशारा भी कर दे तो उसको भी पकड़ लेते हैं। तो माफ़ी का तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ना, कि आपको दिल में कोई ये कहें कि अभी आप उसे माफ़ भी कर दें, हर चीज़ की पकड़ है ऐसे। और अगर हमारे की हुक्मरान को कोई ऐसे कुछ कह दे तो नाउज़ बिल्ला उसके तो जो है झूठे सच्चे सब लोगों को पकड़ लेंगे और उनके ऊपर जुल्म ढाया जाएगा कि वो कि किसकी जुर्रत कैसे हुई कि उसको इतना भी कि हुक्मरान के खिलाफ ये सोचे कि वो उसको मार दें। तो और फिर उसके बाद वो सीन से गायब हो जाएगा कि लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि हुआ क्या उसके साथ। और उसके जानने वाले रिश्तेदार और दूर दूर के लोग, अगर किसी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वो गाड़ी को अगर किसी ने बेचा उसको भी पकड़ के लाके उसको भी मैं वो भी नजर नहीं आएगा दोबारा। तो इतना जुल्म है कि हुक्मरान तो बच जाते हैं मगर उनके ऊपर जो बेचारे उन कमजोर लोग होते हैं और उनकी कोई नहीं होती तो उन पे बहुत जुल्म किया जाता है।
Astaghfirullah, if we come to know that someone is thinking bad about us, and if someone is thinking bad about us, we start thinking about that so much. जी बिल्कुल, यानी दलाइल की तो जरूरत ही नहीं है, हम तो सिर्फ सपोजिशन पे ही बात करने को तैयार होते हैं. अल्लाह हम आज ऐसे हुक्मरान, अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान दे दे, हम वैसे बन जाए तो हुक्मरान भी ऐसे मिल जाएंगे. अल्लाह हमें भी इतनी हिम्मत और इस्तकामत दे कि हम सब को माफ कर दे. आमीन सुम्मा आमीन. जुबान से तो कह देते हैं लेकिन दिल में नाराजगी होती है. सही. आजकल तो अपने अपनी बहन भाई के साथ ऐसे नहीं करते जिनके जान के दुश्मन बन जाते. जी जरा अपने भाई बहनों में कोई जरा सा हमारे खिलाफ काम करते तो हम क्या करने लगते हैं, हर एक देख सकता है. अब देखिए कि इन्होंने ये सवाल किया कि अगर हमें किसी के बारे में ये मालूम है कि क्या उसका खाना हलाल है कि नहीं, अगर हमें मालूम है और उसने खुद बताया है, फिर तो ऑफ कोर्स कोई वजह ही नहीं है ना. लेकिन किसी का नहीं पता, और आप इस्लाम ने हमें ये नहीं कहा कि आप किसी की कुरेद लो या किसी के बारे में राज खोलो, क्योंकि आपने फरमाया कि अगर तुम लोगों के बारे में कुरेद करोगे तो तुम उनको फितने में डाल दोगे. अगर तो खामोशी है, कोई कुछ नहीं पता और असरात भी नहीं और तवक्कुआत भी नहीं, तो ठीक है, अल्लाह ताला को पता है. मसलन आप मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ खाना आता है. अब आप पहले पूछें किसने डोनेशन दी थी, किसके घर से खाना आया, कोई ज़रूरत नहीं है, खा लें बिस्मिल्लाह पढ़ें. लेकिन अगर कहीं पता है और कहीं खुद कोई बता देता है कि आपको खुद भी पता है कि उनका ऐसा बिजनेस है या कोई ऐसा बिकता है उनके पास सामान या कोई चीज़ें या कोई इंटरेस्ट है, तो फिर तो देर इज नो वे. फिर ऐसे वक्त में तो वही बात है ना कि आपको अपनी नेकियां तो नहीं जाया करनी. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. एक मुनाफिक जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम को बहुत अजियतें पहुंची थी, मरता है और इसका बेटा आपसे ख्वाहिश करता है कि आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाए. आप तैयार हो जाते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक जिनको इससे दुख पहुंचा था, अर्ज करते हैं आप ऐसा न करें. इसके साथ ही वो आयत याद दिलाते हैं कि जिसमें इरशाद हुआ कि अगर आप मुनाफिकों के लिए 70 बार दुआ करेंगे तो भी अल्लाह ताला इनको नहीं बख्शेगा. इसके जवाब में आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 70 बार फरमाया है तो मैं 70 बार से ज्यादा दुआ करूंगा ताकि अल्लाह ताला बख्श दे. अलगरज न सिर्फ ये कि आप इसके जनाजे में शरीक हुए, बल्कि इसे कफन के लिए अपना बाबरकत कुर्ता भी इनायत फरमाया. अल्लाह अकबर, क्या शान रहीमी है. एक दुश्मन और खुले दुश्मन के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि जिसकी मिसाल न सिर्फ मुहाल बल्कि नामुमकिन है. और आप में से अक्सर जानते होंगे कि ये अब्दुल्ला बिन उबई की बात थी. सूरह तौबा में अब तफसील से पढ़ेंगे. और अब्दुल्ला बिन उबई वो है जिसने आपको ज़िंदगी में कई बार जज्बाती सदमे दिए. आपकी प्यारी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे तोहमत लगाने वाला ये शख्स था. एक महीना आप इस तराब में रहे, जंगे होती थी, दुश्मनों के साथ मामले होते थे, बीच में इसका काम होता था. लेकिन आपका मामला देखिए कि आप, अल्लाह ने कहा कि 70 बार माफ कहेंगे तो भी, 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करेंगे तो माफ नहीं करेंगे. तो आपने ये नहीं कहा अच्छा मैं नहीं करता, कहा मैं इससे ज्यादा कर लेता हूँ. जब तक कि खुल के आम हुक्म ना आ गया कि आज के बाद अब किसी ऐसे शख्स की नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं रुके. किस कैसा दिल दिखता है आपको, लोगों की मोहब्बतों वाला. हम लोगों के गुनाहों की वजह से उनसे नफरतें करने लगते हैं, दीवारें खींचने लगते हैं. दीवारें नहीं खींचनी, मोहब्बत करनी है. लेकिन जहां अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर उनको प्यार से बता देना. जितना ज्यादा अल्लाह ताला के साथ इंसान मामला अपना अच्छा करता जाता है, दुरुस्त करता जाता है, तो खुद बहुत ये काम फिर उसके लिए आसान हो जाता है. आज हम ज़रा गौर करें कि अपने ख़ानदान के लोगों को भी अगर ज़रा किसी वजह से देखें कि हमें आजमाए जाते हैं, तकलीफ़ दी जाती है, तो हम उनकी बात भी नहीं मानते, हम उनके बारे में गलत बातें कहने लगते हैं, तो कहाँ फिर दुश्मनों के लिए ऐसी बातें करना. और ये जो कुर्ता देने की बात है तो इसका भी वाक़या बहुत ही दिलचस्प है कि अब्दुल्ला बिन उबई जब फौत हुआ था तो वो इसके कफन के लिए इनका बेटा अब्दुल्ला, वो भी नाम उनका भी अब्दुल्ला ही था लेकिन वो मुखलिस सहाबी थे, तो वो नबी सल्लम के पास आए और कहा कि मुझे मालूम है कि मेरा बाप गुनाहगार था लेकिन कलमा तो पढ़ता ही था. और हर औलाद की तरह इनके भी दिल में ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा अमल हो जाए कि जिससे अल्लाह ताला इसको बख्श दे. तो कहने लगा कि आप अपना कुर्ता दे दें, मैं उसमें इनको कफन कर दूंगा ताकि शायद उसकी वजह से अल्लाह ताला इसको अजाब से बचा ले. अब नबी सल्लम देखिए कि कितने यानी एहसान को चुकाने वाले थे, आपको वो एक एहसान याद आ गया जो अब्दुल्ला बिन उबई ने जिंदगी में एक दफा किया था हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु पे। हुआ क्या था कि जब बदर के कैदी आए थे तो उनमें हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। अब जिस्म पे कपड़े होते हैं, जंगों में लोग साथ सूटकेस भर के तो नहीं लाते होंगे ना कपड़ों का, तो जब वहां आए तो अब कपड़ों की जरूरत थी। इतने ऊंचे लंबे थे कि इनको को किसी का कुर्ता पूरा ना आया। उस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई ने अपना कुर्ता दिया था कि इसको पहन ले, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो एहसान याद था जो आपने उसके मरने के बाद अपना कुर्ता उसको दे के पूरा कर लिया कि लो तुम इसको इसमें दफन कर दो। लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा, एक बहुत बड़ी बात है अकीदे से मुतल्लिक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते में दफनाया गया और कुछ फायदा नहीं। आज लोग कहते हैं कि जमजम में भिगो के कफन ले आएंगे तो कुछ होगा, कलमे की पड़ी हुई और कढ़ी हुई चादरें डालेंगे तो होगा, नहीं। जिसका अमल उसको पीछे छोड़ दे उसको इन सारी चीजों से फायदा नहीं होगा। गैर मुस्लिमों की मेजबानी, आप एक शहरी होने की हैसियत से हर एक शख्स के साथ, ख्वाह वो किसी मजहब और मशरब, मशरब कहते हैं पीने खाने का यानी तौर तरीके का क्यों ना हो, नेकी का हुक्म दिया करते। गैर मजाहब के बुजुर्गों को इज्जत की निगाहों से देखा करते और कभी किसी की दिल आजारी और दिल शिकनी रवा न रखते थे। और गैर मुस्लिमों से तोहफे तहाइफ भेजने के ताल्लुकात के अलावा इनकी मेजबानी भी किया करते थे। एक सहाबी कहते हैं कि मैं जमाने कुफर में एक मर्तबा नबी सल्लम के पास आया और कहा कि मैं आपका मेहमान हूँ। आपने खंदा पेशानी से मेरा इस्तकबाल किया और मुझे घर ले गए। खाने को कुछ मौजूद ना था, आपने बकरी का दूध धोया और मुझे दिया, मैं सारा पी गया। आपने पूछा और चाहिए, मैंने कहा हाँ। आपने दूसरी बकरी का दूध निकाला, वो भी पी गया। फिर तीसरी का निकाला, फिर चौथी का। इसी तरह आपने सातों बकरियों का दूध धोया और मैं सब का सब पी गया। यहाँ तक कि काशाने नबूवत के सब आदमी इस दिन फाके में रहे, यानी घर वालों के लिए कुछ नहीं बचा। रावी कहता है कि मैं देखना चाहता था कि मेरे इस रवैये से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर शिकन है या नहीं, मगर अल्लाह की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुशादा दिली से दूध ला रहे थे और जी में खुश हो रहे थे कि मेहमान राजी हो गया। कैसे कैसे लोग आजमाते थे आपको, आप फील कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी को लोग आजमाते हैं। इसी तरह लोग आजमाते हैं मुख्तलिफ वक्तों में। अब आप कुरान के तालिब इल्म है ना, तो आप किसी महफिल में जाएं या कहीं लोगों में तो हर चीज को फौरन ना करने लग जाया करें। बाज़ दफ़ा लोग आपको आजमाना चाहते हैं, शऊर और समझ मांगे, फहम मांगे। बाज़ दफ़ा लोग सिर्फ आपको चेक करने के लिए आपसे बहुत सारी बातें पूछते हैं, सिर्फ आजमाने के लिए कि देखें भला आप इस पे क्या कहते हैं। तो इसलिए दीन की तरफ आने के बाद इंसान बहुत ही ज्यादा मुख्तात हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसका कोई अमल उसके दीन के ऊपर हर्फ का जरिया बन जाए। फिर यहाँ आप देखिए कि ये वाक्य इन्होंने तो इतना ही लिखा है ना, लेकिन मुझे ये वाक्य, मैंने इसे आगे भी पढ़ा हुआ है कि बाद में यही साहब जो शख्स थे ये मुसलमान हो गए और नबी सल्लम के पास आए, तो आपने इनको दूध पेश किया बकरी का, इन्होंने एक बकरी का पिया, गालिबन बस तीन बकरियों का पिया, तो कहा बस अल्लाह के नबी सल्लम मेरा पेट भर गया। पहले सात का पी चुके थे, तो जब इन्होंने कम पे राजी हो गए तो आपने फरमाया कि मोमिन एक आंत से खाता है जबकि काफिर सात आंतों से खाता है। यानी इससे पता चलता है कि काफिर ज्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ हालांकि मशहूर जाए कि ये लोग कुछ नहीं खाते, पाकिस्तान में यही मारूफ है ना, बस वो तो बर्गर खाते हैं, चिप्स खाते हैं, नहीं लेकिन वो हर वक्त खाते हैं ना। तो इससे पता चलता है कि कुफर के साथ पेट भी बड़ा हो जाता है और इंसान का फिर जिंदगी का मशगला भी तो यही रह जाता है ना, खाओ पियो, ईट ड्रिंक कैन बी मैरी। इसी तरह का एक और वाक्या भी तारीख वालों ने यानी मौरखीन ने लिखा है कि एक यहूदी मेहमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। इसने दीदा और दानिस्ता यानी जानते बूझते हुए इतना खाना खाया कि अहले बैत के लिए कुछ भी न छोड़ा। नतीजा ये निकला कि इसे बदहजमी के इस हाल शुरू हो गए, यानी लूज मोशन शुरू हो गए, यहाँ तक कि बिस्तर भी नापाक हो गया। सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, बिस्तर देखा तो इसे खुद अपने दस्ते मुबारक से धोने लगे। खादमों ने अर्ज किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हाजिर हैं, आप तकलीफ न फरमाएं, हम खुद धो लेंगे। मगर आपने ये कहकर इन्हें रोक दिया, मेहमान मेरा था इसलिए मेरा ही हक है कि मैं इसकी खिदमत को बजा लाऊं। हम में से हर एक अपने अपने गिरेबान में झांके। हम होते तो क्या होते। खुदा ना खास्ता ऐसा मामला अगर हमारे साथ हो जाए, हमारा मेहमान आए, पहले तो खा ज्यादा ले, हमारे लिए बचे ना, और फिर गंदगी फैला दे, क्या दोबारा उसको बुलाएंगे? जी, कौन बताएगा?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये तो बहुत ही मतलब बड़ा वाकया है, लाइक कितने आगे तक के मेहमान इतना खाना भी खा जाएं, देन फिर गंदगी भी हो। हमारा तो ये हाल है कि मेहमान ज़्यादा देर रुक भी जाएं तो प्रॉब्लम होने लगती है कि ये जल्दी से जाएं तो हम लोग अपने काम करें और खाने वगैरह के, वो ये दिमाग में यही रहता है, कोई अगर लाइक अनइनवाइटेड आ जाए या मतलब टाइम सही टाइम पर ना आए तो हमें अपनी फिक्र पड़ जाती है कि अभी तो हमने तो अपने बच्चों के लिए पकाया था, अपने घर वालों के लिए, और ये फजूल में आ गए। तो इसी तरह की बातें लाइक माइंड में आती हैं, और ये तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरह के हालात तो कोई मेहमान है और इतना कुछ हो जाए और हम लोग जरा सा भी बर्दाश्त कर लें।
यानी हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है ना। अब देखिए, ये कौन कर सकता है जिसको ये यकीन हो जाए कि मेहमान, अल्लाह की रहमत और हदीस में ना, कि मेहमान जो जिसका ईमान मजबूत है उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे। जी, और आप देखिए कि अगर ऐसा मामला एक्सीडेंटली हुआ ना, अगर कोई जानबूझ के करे तो और बात है, लेकिन ये तो उससे तबीयत खराब उसकी हो गई, तो इस तरह अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मेहमान को होने के नाते अपने तौर पे तो जाहिर है कि इंसान को केयरफुल होना ही चाहिए कि लोग आज़ुर्दा ना हो। इस्लाम ने कैसी चीज़ में पिरो दिया ना कि दोनों तरफ बराबर है, ला दरर वला दरार, ना तुम किसी को तकलीफ दो ना तुम्हें कोई दे। किसी के घर आप जा रहे हैं तो आप किसको ऐसे ना करें कि वो ऐसा मामला कर दे कि जिसकी वजह से अगला वाकई ना बुलाए। गंदगी तो किसी से बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन यहाँ ये ज़हन में रखिएगा कि उसका एक मसला था। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपके पास एक यहूदी मेहमान तक बन के आते थे। हमने जो आम तौर पे नबी सल्लम का हॉल हुलिया और आपके तरीके हमने आम मारूफ किए हुए, क्या उसमें ये गुंजाइश मिलती है, या हम तसव्वुर भी कर सकते हैं, या इस किताब, इस वाक्य को पढ़ने से पहले क्या आपके ज़हन में ये बात थी कि अल्लाह के नबी के घर में मेहमान बन के भी ये लोग आते होंगे? कितना सच्चा दीन है और कितना ज्यादा ऐसा दीन है कि जो काबिल अमल है। हम दीन को छोड़ते हैं तो उसी की वजह से फिर मुश्किलों में पड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक दफा शाह खबश के भेजे हुए सफीर आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आप बजाते खुद इनकी मेहमानी और मदारत में मसरूफ हो गए। सहाबा ने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखें, हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। आपने फरमाया, जब मुसलमान खबश गए थे तो इन लोगों ने इनकी खिदमत की थी, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं भी इनकी खिदमत करूं। बराबरी। बीमारों की बीमार पुरसी। अब ये भी देख लेते हैं। आप सल्लम जब सुन लेते कि फुला मोहल्ले में फुला मुसलमान बीमार पड़ा है तो उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले जाते, और बीमार पुरसी में किसी अमीर या गरीब में कोई तफरीक ना करते, यानी अमीर या गरीब में कोई फर्क ना करते, बल्कि छोटे छोटे आदमियों की भी इयादत करते, और जिन बीमारों की हालत नाजुक देखते इन्हें अपने मकान के करीब ले आते ताकि बार बार इनकी इयादत कर सकें। चुनाचे हजरत साद बिन मास रजी अल्लाह अन्हो जब गजवे अहजाब में जख्मी हुए तो इनका खेमा मस्जिद में लगवा दिया गया ताकि आप हर वक्त इनकी खबरगिरी कर सकें। आज हम ऐसा करते हैं। और ये साद बिन मास का जब आपने वाक्य पढ़ा तो ये बहुत दिलसोज वाक्य है। गज़वे अहज़ाब में इनको यानी तीर लगे थे और इनका खून बह निकला था, जैसे कलाई के अंदर से खून निकलना शुरू हो गया था। तो इन्होंने अल्लाह ताला से एक दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे मौत ना आए जब तक कि मैं यहूद का अंजाम ना देख लूँ, क्योंकि अहज़ाब के मौके पर बनू कुरैज़ा ने गद्दारी की थी। वो मदीना के अंदर ही थे मुसलमानों के साथ, तो वही एक खतरा थे अंदर, और उन्होंने वादे तोड़ दिए थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ से सुनी कि इनका जख्म रुक गया। फिर उसके बाद जब गज़वे खंदक ख़त्म हुई, यानी अहज़ाब दोनों एक ही सुर जंग के नाम है, तो फिर नबी सल्लम के पास जिब्राइल आए और कहा कि अब बनू कुरैज़ा की तरफ चलते हैं। तो वहाँ जब गए और मामला सारा निपटा तो हज़रत साद बिन माज़ को सालिस बनाया गया था कि साद जो भी फैसला करेंगे वही फैसला मंजूर होगा। तो इन्होंने कहा कि मैं तो ये कहूँगा कि इनके मर्दों को कत्ल किया जाए और बच्चों और औरतों को कैदी बनाया जाए। तो नबी सल्लम ने फरमाया कि सात ने जो फैसला किया है सातवें आसमान पे रब का भी यही फैसला है। यानी इनका फैसला अल्लाह के फैसले के साथ मिल गया था, मुवाफ़कत हो गई। फिर इसी तरह हुआ, जब ये मामला हुआ तो उसके बाद नबी सल्लम ने देखा कि मस्जिद के पास से खून की धारें निकल रही हैं, तो अंदर जाके देखा तो वही जख्म जो रुक गया हुआ था उसमें से खून निकल चुका है, और इस तरह सात भी नमाज का इंतकाल हो गया। यानी इन्होंने दुआ मांगी ही इतनी देर तक की थी, अल्लाह ताला ने वो काम इनका पूरा किया, और इस तरह से फिर वो उनका इंतकाल हुआ। आपने फरमाया कि सात की मौत से अर्श हिल गया। इसी तरह इन्हीं के बारे में एक और रिवायत में आता है कि अगर कब्र किसी को ना भीजती, यानी कब्र किसी को ना दबाती, तो वो सात होते, लेकिन सात की कब्र ने भी उनको भेजा था। यानी न जाने क्या कुछ मरहले आगे के हैं। तो बहरहाल ये तो चीज़ इसलिए आपको बताई कि ऐसे प्यारे सहाबी भी होते थे कि जिनके लिए फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचा करते थे कि ये करीब रहें ताकि मैं इनकी इयादत कर सकूं। खादमे मस्जिद की नमाज़े जनाजा। एक शख्स मस्जिद में झाड़ू दिया करता था, वो बीमार हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो कई दफ़ा इसके मकान पर इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, हालांकि वो बहुत ही गरीब और कसम पुरसी यानी हैंड टू मौत, बहुत ही गुर्बत की हालत में था। एक दिन इत्तफाकन वो रात को फौत हो गया। लोगों ने इसका जनाजा पढ़कर रात को ही दफन कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया इसका क्या हाल है। अर्ज किया गया वो तो फौत हो गया, रात का वक्त था, हमने आपको तकलीफ देना मुनासिब ना समझा और दफन कर दिया। आप इनसे नाराज हुए, मुझे पता दिया जाना चाहिए था, मैं ज़रूर इसके जनाजे में शरीक होता। चुनाचे आप उठे, इसकी कब्र पर तशरीफ ले गए और कब्रिस्तान में जाकर इसकी नमाज जनाजा पढ़ी। ख्याल फरमाइए कि इस सलूक से सहाबे कराम के दिलों पर किस कदर असर हुआ होगा, और मरने वाले के वारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शफकत से किस कदर मुतासिर हुए होंगे। और कौन था? क्लीनिंग पर्सन था, हाक रोब। और बात जो है तो मतलब कि औरत थी वो, कि कैसे आप इबादत के लिए जाते थे, छोटे से छोटे तबके के लोगों को भी आप इज्जत देते थे, क्योंकि वो मस्जिद की खिदमत करता था, तो उससे भी एक मुकाम मिलता है कि ऐसे काम करने और ऐसी जगहों को साफ रखना, टेक केयर करना, ये कितनी बड़ी नेकी है। हमसायों की खबर गिरी। आप अहले शहर, अहले मोहल्ला और हमसायों के हकूक अलग अलग मलहूस रखते थे, जो ज्यादा करीब होते इनकी ज्यादा निगहदाश्त करते। जब आपके पास कोई चीज़ या तोहफा आता तो आप अपने हमसायों को भी ज़रूर इससे कुछ ना कुछ देते, और फरमाते जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाते हैं तो मुझे हमसायों की तरफ ज़रूर तवज्जो दिलाते हैं, यहाँ तक कि मुझे ख्याल पैदा हो गया कि कहीं इन्हें वारिस ही ना बना दिया जाए। आपने एक दफ़ा अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया बेहतरीन शख्स वो है जिसका हमसाया इस पर खुश हो और इससे इसे कभी ईज़ा न पहुंचे। और ए अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हो, तू हकूके हमसायगी को बहुत मलहूज रख, यानी उसका ख्याल रख। मसलन जब तू शोरबा पकाए तो इसमें पानी ज्यादा डाल दे, ताकि अपने हमसायों को भी इसमें से कुछ दे सके। इस हदीस में आपने अपने हमसायों को हर वो चीज़ जिसकी इनको ज़रूरत हो, अगरचे वो सालन ही क्यों ना हो, देने की हिदायत फरमाई, और तलकीन फरमाई कि इन्हें बहर सूरत खुश रखना चाहिए और नाराज़गी का मौका नहीं देना चाहिए। एक दफ़ा आपने तीन बार कसम के साथ इरशाद फरमाया उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं, उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं। किसका? लोगों ने अर्ज़ किया किसका ईमान कामिल नहीं, तो आपने फरमाया उस शख्स का ईमान कामिल नहीं जिसका हमसाया इसकी बुराइयों से महफूज नहीं। इस हदीस में भी आपने एक शहरी के लिए ये वाजे कर दिया कि इस पर दीगर अहले शहर की बनिस्बत हमसायों का ज्यादा हक है, तो अल्लाह करे कि हम भी ऐसे ही हकूक अदा करने वाले बन जाएं। सालन पतला करके दूसरों को दे दो, क्या बताती है ये चीज़ हमारा हाल? के कोई आ जाए तो हम छुपा लेते हैं कि इसके लिए ये अच्छी चीज़ क्यों रखनी, ये बाद में निकालेंगे। जब दिल बड़ा हो जाता है ना, तो अल्लाह ताला फिर इंसानों की मोहब्बत डाल देता है। कबाइल में मुसालेहत। कबाइल कबीले से, मुसालेहत सुलह, यानी इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं जो कम्युनिटी में बाज़ झगड़े हो जाते हैं। आप देखते हैं कि दीन के नाम पे, दुनिया के नाम पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो ऐसे वक्तों के लिए क्या बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शहरी होने की हैसियत से इस चीज़ को भी अपने फ़राइज़ में दाखिल कर रखा था कि अगर कहीं दो शख्स या दो कबीले लड़ पड़ते तो आप इनकी सुलह के लिए तशरीफ़ ले जाते और हर मुमकिन कोशिश से इनमें सुलह करा देते। सहीहीन यानी सही बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि बनु अमर और बनी औफ ये दो कबीले थे, इनमें बाहम झगड़ा हो गया, अल्लाह के नबी सल्लम इनकी सुलह के लिए तशरीफ ले गए। इनकी सुलह कराने में नबी सल्लम को इतनी देर हुई कि नमाज का वक्त भी तंग हो गया और सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की इक्तदा में नमाज पढ़ी। झगड़े भी करते हैं हमारे इर्द गिर्द तो नहीं लोगों के झगड़े, और हम वहां क्या कर रहे होते हैं, सुलह या फिर गॉसिप, और जल्दी पे तेल डालते हैं ना, ये कर लो वो कर ले, इसकी बात उधर इसकी बात उधर, ऐसा नहीं करना इंशाअल्लाह ताला। देहातियों का ख्याल, नबी सल्लम ने एक शहरी होने की हैसियत से हमें ये भी तालीम दी है कि अगर कोई बदवी या देहाती शहर में आ जाए तो खरीदो फरोख्त में इसकी मुआवनत करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। कई बदवी ऐसे थे जिनका नबी सल्लम से दोस्ताना ताल्लुक था, वो जब आते कोई गांव की चीज़ नबी सल्लम के लिए बतौर तोहफा ले आते, आप वापसी पर कोई ना कोई शहरी चीज़ बतौर तोहफा दे देते। ऐसा भी होता कि बास देहाती लोग इस ख्याल से कि दुकानदार हमें धोखा न दे, जब कुछ खरीदना होता तो नबी सल्लम को अपने साथ ले लेते, आप बाजार जाकर इनको सौदा खरीद देते। अगर उन्होंने फरोख करना होता तब भी नबी सल्लम इनके साथ जाते और माल फरोख्त करते। एक मसरूफ इंसान से ये चीजें तवक्को की जाती हैं आज के दौर में, कितना एक नेचुरल वे है ना जिंदगी गुजारने का। और वो लोग जो इसी गिल्ट में रहते हैं कि हम ये काम करते हैं पता नहीं ठीक करते हैं या गलत करते हैं, तो उनके लिए इसमें रहनुमाई भी तो है ना कि फराइज के साथ साथ अगर इंसान इस तरह की नेकियां कर पाता है या अगर कोई ऐसा काम कर लेता है जिससे दूसरों को फायदा होता है तो नीयत सही है और इससे अपनी कोई बाकी चीजों में रुकावट ना आए तो ये भी अच्छी बात है। दीनदार का एक मुकम्मल तसव्वुर नहीं मिल रहा, हम सोचते हैं दीनदार क्या है, तस्बीह टोपी मस्जिद नमाज, नहीं, एक अमली दीन, अल्लाह के बंदों से प्यार करने वाला दीन, उसके बंदों का ख्याल रखने वाला दीन, कितना प्यार सिखाता है हमें ये सब कुछ के इस तरह की चीजें ही वाकई आज अल्लाह के नबी सल्लम की आम करने की जरूरत है। और जब ये करेंगे तो फिर अल्लाह के नबी सल्लम का मामला जो है वो लोगों की नजरों में जाहिर होगा। आदाबे मजलिस की तलकीन, नबी सल्लम ने एक शहरी होने की हैसियत से हमें आदाबे मजलिस की भी तालीम दी है कि मजलिस में नहायत करीने से बैठो, यानी तरीके सलीके से बैठो, टांगे खोल के नहीं, और ऐसा नहीं कि एक की जगह पे दो की जगह पे एक बैठ जाए, अगर और आदमी आ जाए तो इन्हें जगह दो, उठना हो तो अमीरे मजलिस की इजाजत से उठो, बोलना हो तो दूसरे की बात ना काटो, एक एक बोलो ताकि शोर ना हो और बदनज़मी पैदा ना हो। महफिल में बैठने के तरीके भी सिखा दिए। नौ वारद की ताज़ीम, नौ वारद कौन होता है, नया आने वाला, नौ नए को कहते हैं वारद, आने वाला, इसकी ताज़ीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी आदत मुबारक ये थी कि अगर कोई शख्स खिदमत अकदस में आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताज़ीम बजा लाते। अगर आप तकिया लगाए बैठे होते तो तकिया निकाल कर इसे दे देते, वो लेने से इनकार करता तो आप इसरार फरमाते, और अगर गुंजाइश होती तो इसे आप अपने साथ अपनी मसनत पर बिठा लेते। सुभान अल्लाह, खुले दिल से इस्तकबाल करना ना। मुसाफहा और मुआनिका, मुसाफहा किसको कहते हैं, शेक हैंड को, और मुआनिका कहते हैं हक को। मुसाफा कैसे, सफहा, ये जो हमारी हाथ की हथेली होती है ना अंदर, सफहा सफहा, तो मुसाफहा बाब मुफाअला, हाथ का हाथ से मिलना। और मुआनका क्या है, उनुक से, आइन नून काफ, उनुक कहते हैं गर्दन को, तो मुआनका कहता है गर्दन का गर्दन से मिलना, जब किसी को मिलते हैं तो गर्दन साथ लगती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफे के लिए खुद पेश दस्ती फरमाते। इस्लाम में मुसाफा भी मोहब्बत और इखलास बढ़ाने के लिए एक नेक तरीका है, इसलिए आप हर अमीर और गरीब से मुसाफे के लिए खुद हाथ बढ़ाते। जब तक वो शख्स अपना हाथ न खींच लेता उस वक्त तक अपना हाथ न खींचते, और बाहर से आने वालों से मुआनिका फरमाते। यानी जिनसे रोजमर्रा मुलाकात होती उनसे सिर्फ हाथ मिलाते, और जिनसे को देर से ज्यादा दिन बाद मिलते तो माँ निकाह फरमाते, और यही सुन्नत तरीका है। जो देर से मिले उसको गले मिल सकते हैं, लेकिन जिससे हर वक्त मुलाकात है तो हर वक्त भी फिर उनको गले से लगाना ये भी कोई ज्यादा पसंदीदा बात नहीं है। दोस्तों का ख्याल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्तों का अदब और एहतराम भी मुसावी दर्जे पर फरमाया करते थे, यानी बराबरी पे। एक दफा आप एक सहाबी के साथ कुएं पर तशरीफ ले गए, गुसल का इरादा था, सोचा पर्दा हो तो गुसल किया जाए। सहाबी ने कहा, आप गुसल फरमाए, मैं चादर की आड़ किए देता हूँ। चुनाचे उन्होंने चादर से पर्दा किया और नबी सल्लम ने गुसल फरमाया। जब इस सहाबी की बारी आई तो आपने फरमाया, अब तुम नहाओ और मैं चादर की आड़ किए देता हूँ। खादिम ने बहुत कहा कि नबी सल्लम आप तकलीफ ना फरमाए, मगर आप ना माने, और जब तक वो गुसल से फारिग ना हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा किए खड़े रहे। ये और इस किस्म के बीसियों वाकयात हैं जिनसे पता चलता है कि नबी सल्लम का सलूक अपने दोस्तों, पड़ोसियों, महल्लादारों और शहर वालों से कैसा रहा। एक शहरी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि वो अपने फ़राइज़ को समझे, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और सबके हकूक की जुदागाना निगहदाश्त करे, जिसका मुकम्मल नमूना नबी सल्लम की सीरत तैयबा में मौजूद है। तो ये था आपका एक शहरी के नाते से रोल। मैं चाहूंगी कि आप लोग भी डिस्कशन में शामिल हों, कि आप इस पूरे लेसन को सुनने के बाद अब नबी सल्लम के बारे में क्या महसूस करते हैं।
उनके जो अखलाक थे वो आज की दुनिया में तो कहीं भी नज़र नहीं आते हैं लोगों में, कि जिस तरह का उनके अंदर सब्र था और लोगों के साथ मिलना, जो भी अखलाक है। इंसान जितना भी वैसा बनना चाहे फिर भी कभी कभी खुद गर्ज हो जाता है। तो बस यही है कि अगर उन जैसे हम भी बन जाएं तो ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना हो, कोई मुश्किल ना हो, हर कोई बहुत अच्छा लगे हमें और ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे।
जी सही कहा। देखिए कि हम जब कटी हुई तस्वीर देखते हैं ना तो असल रुख नहीं समझ आता। मुझे लगता है कि एग्जेजरेशन के नाम पे कह लें या किसी और वजह से नबी सल्लम की एक बड़ी मखसूस पिक्चर हमारे सामने रखी गई। सच है कि झूठ? दुश्मनी खत्म करनी है, इंसानों के रवैये बदलने हैं। हमारा हाल क्या कि इंसानों को मारने लगते हैं। खेल विद काइंडनेस, जितना ज्यादा आप अच्छे तरीके से लोगों से डील करेंगे वो खुद बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे, और उनको पता है कि हम गलत हैं, आप उनको सही कह रहे हैं, वो कब तक झुठलाएंगे? क्या आपको कभी कोई कह दे कि तुम मतलब आप गलत काम कर रहे हैं और दूसरा कि नहीं ठीक है? चले मिसाल है, आपने खाना पकाया, वो बहुत ही बदजायका पका, बहुत ही बुरा, नमक तेज था, मिर्ची तेज थी, कुछ भी था, और आपको पता अच्छा नहीं पका, और कोई खाते हुए कि नहीं बहुत अच्छा पका है, ठीक है, बहुत अच्छा है, गुड, अच्छी बात है, तो क्या आपको नहीं पता होता गलत है? आप कहते हैं ये मेरा दिल रख रहा है, ये देखो कैसे मेरा दिल संभाल रहा है। बिल्कुल इसी तरह जब लोगों के साथ हम यानी उनकी गलतियों के बावजूद उनको जरा एडमायर करेंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि वो खुद बहुत हमारी तरफ खिंचे आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर लेसन पूरा हुआ। अगला चैप्टर जो है वो एक पीर की हैसियत से है, अब देखेंगे उसमें क्या है। एक कमेंट किसी का तो पढ़ लेती हूँ। माई कजन डोंट वॉन्ट टू टॉक विथ मी फ्रॉम तकरीबन 6 to 7 months, बट मैं इन्हें फोन पर कंटिन्यू बात करती रही एवरी मंथ। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज सच अ गुड फ्रेंड नाउ। गुड, खत्म हो गई ना बगस, खत्म हो गया नाफरमान, गलत चीजें निकल गई और ठीक चीज रह गई। तो करना भी यही है कि दुश्मनियों को खत्म करना है, दुश्मन को नहीं। उसको तो एक दफा मारना आसान है ना, गर्दन काट दी, लेकिन दुश्मन को दोस्त में बदलने में या उसकी दुश्मनी को मारने के लिए खुद कई बार मरना पड़ता है। सबर, बर्दाश्त, तकवा ये चीजों को आसान करता है। सुभान रब्बी का रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।